ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित प्रिय आत्मन, भारतीय संस्कृति का आधार पूरा विश्व आज समझ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव से जो कुछ व्यक्त किया पूरे विश्व के लोगों के लिए। हम अंतरिक्ष की शांति की बात करते हैं, वसुधैव तो कुटुंबकम की बात करते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा बदन की बात करते हैं, तो आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि भारत के ऋषि मुनियों ने जो विचार दिए हैं, हर व्यक्ति अपने को पहचाने और पूरा विश्व अपने में देखे। हमारी जो लीलाएं हैं, पहले वैज्ञानिक लोग भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मिट्टी खाने पर, माँ जसोदा के कहने पर किसने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, अर्जुन को विराट रूप दिखाया, पहले वैज्ञानिक लोग भी इन बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन आज मानने लगे। हमारी कोई भी कहानी, हमारा कोई भी मंत्र, कोई भी ऋचाएँ हर व्यक्ति के लिए है, न उसका संबंध जाति से है, न प्रदेश से, न देश से, व्यक्ति से है। हमारी संस्कृति जब वसुधैव तो कुटुंबकम की बात करती है, तो हमारा विचार भारतीय संस्कृति का आधार पूरा विश्व एक कुटुंब है। तो आज विश्व के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, सब मानते हैं, स्वीकार किया है कि भारत की संस्कृति पूरे विश्व के लिए है। उसी आधार पर यम नियम की बात करेंगे। आपके समक्ष साहेब अम्बालाल, हमारे परम आदरणीय शास्त्री जी, आप सब हैं। इन बातों पर थोड़ा विचार में मैं अपने ढंग से व्यक्त करूंगा। आपके समक्ष जो नियम है, उस नियम के पहले ये कहना चाहूँगा, शास्त्री जी ने जबरदस्त इशारा किया, हम सब जब परमात्मा की संतान हैं तो आप कमजोर कैसे हो गए? आप में हताशा निराशा क्यों आई? प्रवचन मैं आपके समक्ष प्रारंभ कर रहा हूँ, लेकिन मैं परमात्मा को सुना रहा हूँ, मैं आपको कमजोर समझ के नहीं सुना रहा। और आपके अंदर जो परमात्मा आप प्रकट है, उसी को प्रकट करना है, ना भक्ति का खंडन है, न किसी संप्रदाय का खंडन है, केवल समझना है। मैं अपने विचार में ले लूँगा वैज्ञानिक ढंग से। संप्रदाय का गौरव है, आप कहीं भी जन्मे उसका गौरव है, लेकिन आपकी जो सुगंध है वो तो सबके लिए है, उससे जाति पांति से कोई मतलब नहीं, देश विदेश से कोई मतलब नहीं, मानव मात्र से है। तो जो विचार आपके सामने यम नियम के आधार पर व्यक्त करने जा रहा हूँ, हर नर और नारी के लिए है। वो विश्व में कहीं भी जन्मा है, चाहे वह बड़े घर में जन्मा या झोपड़ी में जन्मा, आप पढ़े लिखे हैं या किसान है, लेकिन यम नियम का आधार लेकर के जो आपके समक्ष विचार व्यक्त करूंगा, हर एक व्यक्ति, हर एक नर और नारी के लिए, हर एक बालक और बालिका के लिए है। यम नियम की जो बात है, साहब ने इशारा किया शुद्धि की बात, अगर आप थोड़ा भी योग का अध्ययन किए हैं तो आप पाएंगे यम में पांच चीजें आती हैं, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। नियम में भी पांच चीजें हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति। इसी तप, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति को क्रिया योग से ज्यादा प्रचार किया गया, लेकिन है हमारी ही बात। अब प्रथम है यम में अहिंसा, अहिंसा स्तेय प्रज्ञा सत्व ब्रह्मचर्य। आप सब जरा अपने मन में विचार करें, हम लोग जन्म से थोड़े हिंसक तो हैं ही, लेकिन मनोविज्ञान एक विचार दे रहा है, हमारे आपकी जो सोचने की शक्ति है, हमारा आपका जो माइंड है, जिसे हमने शुभ अशुभ कहा, आश्चर्य दैवी विचार कहा, उसी को वैज्ञानिकों ने परस्पेक्चुअल और कंसेप्चुअल कहा। आपका जन्म कहीं भी हुआ, लेकिन दो विचार आप लेकर आए हैं अपने अंदर ही। आपके अंदर राम का भी विचार है, आपके अंदर रावण का भी विचार है, हमारे आपके अंदर शुभ भी है और अशुभ भी है। लेकिन मैं मनोवैज्ञानिकों ने एक जबरदस्त बात कही, हमारे पूज्य शास्त्री जी ने जो कीर्तन की बात की, नाम की बात की, उसका एक जबरदस्त रहस्य है, मनोवैज्ञानिक रहस्य है। हमारे आपके मस्तिष्क का जो विकास है या पतन है, ऊर्ध गति या अधो गति, साहब ने ऊर्ध गति अधो गति की बात की ना, ये सुनने और देखने से। आप ऊर्ध गति की बात सुन रहे हैं या अधो गति की? आप ऊर्ध की तरफ जाने का कुछ दृश्य देख रहे हैं कि अधो गति का? तो वैज्ञानिकों ने आज मान लिया है कि जन्म से जो हम लेकर आए हैं, दैवी और आसुरी, शुभ और अशुभ, दोनों विचार लेकर आए हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने परस्पेक्चुअल और कंसेप्चुअल का, ये जो नाम का आधार है, हम अपने अंदर जो कुछ भी है उसको खत्म नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर क्रोध है, लालच है, लोभ है, विकार है, मद है, मत्सर है, इसे आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान भी कहता है जो आपके पास है उसे आप समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन नर नारी के रूप में हम और आप जो इस धरती पर आए उसका रूपांतर कर सकते हैं। आज विज्ञान मान गया, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, वह सुनने देखने से जो अशुभ विचार है, जो परस्पेक्चुअल है, रावण जैसा जो विचार है, कंस जैसा जो विचार है, उसका हम सुनने और देखने से, साधना के माध्यम से रूपांतर कर सकते हैं। जन्म से हम आप हिंसक हैं, आप देख लीजिए क्यों हिंसक हैं। हम अपनी गर्भावस्था की बात देखें, हम लिक्विड थे, लार्वा मेढक बने, छठे बने वानर बने, गर्भ में सातवें महीने में वाकट के नर या नारी बने। हम पशुओं में से आए हैं, और आपका विज्ञान भी कहता है जहां से आप आए हैं वहां का संस्कार तो आपके साथ रहेगा, लेकिन नर और नारी उसका रूपांतर कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते, रूपांतर। हमारे यहां मंदिर की बात है, सत्संग की बात है, तीर्थ की बात है, शोभा यात्रा की बात है, कीर्तन की बात है, आरती है, पूजा है, जिसे हम व्यवहार में कर्मकांड कहते हैं, वह रूपांतर की प्रक्रिया है। क्योंकि विज्ञान भी कहता है जो सुन सकता है वही बोल सकता है, जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। इसलिए जब आप हम इस धरती पर आए तो पर्यावरण से जो सुने वही बोल रहे हैं, वही फिर देखेंगे। पहले सुनते हैं और फिर देखते हैं, और सुनना देखना वही हमारा एक संस्कार बनता है जिसे विज्ञान सेकंड नेचर मानता है। आप पूरा विश्व अपने सामने रखें, अगर व्यवहार की बात आप करें तो आप पाएंगे कि पूरे व्यवहार को हम एक समाज में नहीं देख सकते। एक समाज कहता है गाय की पूजा करो, एक समाज नहीं मानता। एक समाज में खाने पीने की बात अलग है, दूसरे समाज में अलग है। शादी विवाह की भी बात करें तो एक समाज में अलग है, एक समाज में कुछ और है। लेकिन जब ज्ञान की बात आएगी, रूपांतरित करने की बात आएगी, तो वहाँ हम सब एक हो जाते हैं। एक जा विचार मैं आपको देना चाहूँगा और बड़े प्यार से दूंगा। हमारा जन्म कहीं भी हुआ, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी जाति में, किसी भी देश में, लेकिन सत्य सभी बोलते हैं। बालक किसी भी जाति में पैदा हुआ, कहीं भी पैदा हुआ, अमीर घर में कि गरीब घर में, उसके पिता पढ़े लिखे हैं या किसान हैं, लेकिन जन्म से हर बालक सत्य बोलता है, प्रेम भी करता है, सत्य और प्रेम। या विचार कीजिए, जो चीज शाश्वत है सत्य और प्रेम। शास्त्री ने जो इशारा किया उसी का थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से कह रहा। विज्ञान कहता जो है उसके होने में बहुत तकलीफ नहीं है। हम बनना चाहते हैं, विज्ञान भी कहता है हम बनना चाहते हैं, और आपका विज्ञान भी कहता है जब आप बनना चाहोगे तो बिगड़ भी जाओगे। उदाहरण के रूप में गेहूं गेहूं होता है, आप गेहूं बोले बोल देते हैं कि हमने गेहूं बनाया, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से गेहूं को गेहूं होने में तकलीफ नहीं है। गेहूं गेहूं ही होगा, नहीं होगा तो चना नहीं होगा, बाबर बाबर ही होगा, आम का पेड़ आम ही होगा, गुठली में से आम ही होगा। ठीक है, आप कहते हैं मैंने बनाया, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो चीज है वही हो सकती है। विज्ञान इसको कहा बीन, और फिर आया जो आप बनना चाहते हैं उसको कहा ड्रीम। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म से आप सत्य बोलते हैं, जन्म से आप प्रेम करते हैं, तो सत्य और प्रेम। या विचार कीजिए, जब हमने आपसे कहा कि प्रेम की बात की, सत्य की बात की, और यम में प्रथम नियम आया अहिंसा का, अहिंसा अस्तेय अपरग्रह सत्य और ब्रह्मचर्य, तो जा विचार कीजिए, जो आदमी जन्म से सत्य और प्रेम लेकर आया है तो परेशानी कहाँ पैदा हुई? आप तकलीफ में क्यों आए? क्योंकि ये जगत द्वंद्व है, जहां सत्य है वहीं दुनिया में सत्य भी सिखाया, जहां प्रेम है संपर्क में आकर हमने घृणा भी सीखी, जहां हमें आगे बढ़ना था लोगों ने हताश निराश करके मुझे कहीं और ला दिया। तो जन्म से हम आप सत्य और प्रेम लेकर आए, साधना के द्वारा इसी सत्य और प्रेम का जो विस्तार है वही ईश्वरी विस्तार है। जो सत्य पर आए, राम की राम का आधार सत्य पर है, किसका आधार प्रेम पर है, राम का आधार सत्य है, प्रेम दूसरे नंबर पर है, कृष्ण का आधार प्रथम है, सत्य दूसरे नंबर पर है, और राम और कृष्ण दोनों हमारे हैं, पूरे विश्व के हैं। आज पूरा विश्व राम और कृष्ण का सम्मान कर रहा है और मान रहे हैं, अर्थात आप में सत्य और प्रेम यही ईश्वर स्वरूप है। इसी का सघन होना और इसी का विस्तार होना, आपके पिंड में सत्य और प्रेम है, इसी का विस्तार हो जाए तो आप स्वयं राम और कृष्ण के रूप हो जाएंगे, परमात्मा के रूप हो जाएंगे। किसी का कोई खंडन नहीं है, बाद में मैं बात ले लूंगा। न किसी संप्रदाय का खंडन है, न किसी के विचार का खंडन है, न किसी के पंथ का खंडन है। खंडन तो है ही नहीं, क्योंकि अंत में तो हम पूर्ण बन जाते हैं। हमारा मंत्र है ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हम तो पूर्णता की बात करते हैं, और जो पूर्ण है तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि हम पूर्ण हैं। संभव है हमारे में से कोई निकला हो फ्रैक्शन, तो आज मनोविज्ञान भी कहता है जो टोटल है वह किसी के विरुद्ध भी नहीं जाता, लेकिन इसमें से जो फ्रैक्शन होगा, अंश होगा, जो निकले होंगे, शायद वो टोटल का विरोध कर सकते हैं। तो हमारी संस्कृति हमें पूर्णमिदम की तरफ ले जाती है, ओम पूर्णमदा की तरफ ले जाती है, और इसी आधार पर पूरे विश्व को हम अपना कुटुंब मानते हैं। इसी आधार पर, इसी अनुभव पर हमारे ऋषियों ने कह दिया सत्य एक है, कहने वाले अनेक हैं, अनुभव सिर्फ एक है, व्यक्त करने की प्रथा अलग अलग है। हमने उसको पहचाना और जाना और कह दिया। अब उसी सिलसिले में आप चलो, पहले आप ले लें, न किसी धर्म का न किसी संप्रदाय का खंडन नहीं है, क्योंकि आपका मनोविज्ञान कह रहा है। जब आप किसी का खंडन करते तो अपना कर रहे हैं। आप किसी को मानिए, आप राम को मानिए कि कृष्ण को, सब में राम है, सब में कृष्ण है। अगर हमारा मुस्लिम भाई हमारे संपर्क में है, हमारा विचार मिलता जुलता है, मुस्लिम भाई से पूछिए, वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, तो बताइए, सब में वो भी अल्लाह देख रहा है, सब में हम परमात्मा देख रहे हैं, गड़बड़ी कहाँ पैदा हुई वो बात बताऊँ। अभी इतना इशारा करूँ, गड़बड़ी न महावीर में है, न बुद्ध में, न शंकराचार्य जी में, न माधवाचार्य जी में, न निम्बार्काचार्य जी में, न पैगंबर में, न जीसस क्राइस्ट में। गड़बड़ी हम जो मानने वाले हैं अपनी अलग से सेनाक बनाने के लिए एक दूसरे की निंदा और विरोध करने लगे, कहाँ है गड़बड़ी। और उसी सिलसिले में अक्सर मैं आपके सामने आता हूँ। आप हिंदू हैं उसका एक गौरव अनुभव करें, आप जिस जाति के हैं उसका एक गौरव अनुभव करें, लेकिन जब आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो आप इससे ऊपर उठ जाएंगे, गौरव बना रहे, गौरव का खंडन नहीं होगा। हम आप सब यहाँ अभी सो गए तो आपका क्या खंडन हुआ, लेकिन आप जाति पांति से ऊपर चले गए, आश्रम से ऊपर चले गए, कोठी से ऊपर चले गए, नाम से ऊपर चले गए, लेकिन ये जो प्रक्रिया है, प्रकृति की जो प्रक्रिया है, उसमें तो आसानी हो जाती है, लेकिन साधना के द्वारा उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जबरदस्त हमें विधि अपनानी पड़ेगी। हम आप लोग सो जाते हैं, वहां कौन मनीषानंद है, कौन शास्त्री जी है, यह प्रक्रिया जो प्रकृति की है, इसे हम अज्ञान समाधि कहेंगे। जब आप सुसुप्ति में आए, आप अपना भी ख्याल नहीं है, फिर आप जागे तो आप मनीषानंद हुए, शास्त्री जी हुए, हिंदू हुए, मुसलमान हुए, ईसाई हुए, लेकिन जब आप प्रगाढ़ निद्रा में थे, जब आप सुसुप्ति में थे, आप हैं लेकिन जाति पांति से ऊपर। यही स्थिति हमें साधना के द्वारा प्राप्त करनी है। प्रकृति की जो चीज है वो साधना के द्वारा प्राप्त हो सकती है, साधना कोई और अलग चीज नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, कई बार लोग मुझसे कहते हैं, अभी आपके मन की बात करूं जो स्पिरिचुअल कंसेप्चुअल की बात कर रहा था, मेरे प्रिय आत्मन आप देख लीजिए कि आज के वैज्ञानिक भी हमारे ऋषि मुनियों का चिंतन स्वीकार कर रहे हैं। आपके मन की बात, आपके मन का संबंध अगर कान से है, आप यहां बैठे हैं, एक क्षण के लिए आपका मन कॉलेज में चला जाए, मेडिकल में है, यहाँ प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, बैठे हैं। हमने कहा परमात्मा वैज्ञानिक कह रहे अंतरिक्ष अंतर क्या है, वो भी तो एक रहा कि हम प्रकट हुए अंतरिक्ष में से, हर चीज प्रकट होती है अंतरिक्ष में, समा जाती है। हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं, आप नाम को लेकर पकड़े हुए हैं, तो हमारी हर चीज को विज्ञान बता रहा कि नहीं अब नाम में न पकड़। वैज्ञानिक कह रहे हैं, खास आइंस्टाइन ने सिद्ध किया कि अंतरिक्ष में से हर चीज पैदा होती है, उत्पन्न होती है और उसी में समा जाती है। और हम कहते हैं कि परमात्मा से हर चीज जाती, परमात्मा समा गए, तो यही तो कह रहा, आप परमात्मा में आए और अंत में परमात्मा मिले, ये बीच का जो समय है, ये आज भी मैं परमात्मा था उसमें से आया, अंत में परमात्मा जाऊंगा, तो ये तकलीफ क्यों आ गई? क्योंकि आप अपने को परमात्मा मान नहीं रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे, आप नहीं स्वीकार कर रहे। आप तो कहते बस मैं गरीब हूं, आप काहे को गरीब है, किस बात में गरीब है आप जा बताइए तो सही। ये आप अपना शरीर देखो, ये पंच महाभूत, आज विज्ञान भी कहता जो पंच महाभूत है, ये पांच एनर्जीज है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। आकाश में कितनी ताकत, वायु में कितनी ताकत, जल में कितनी ताकत, पृथ्वी में कितनी ताकत, मेरे प्रिय आत्मन जिसे आप पंच महाभूत कहते हो, वैज्ञानिक इसी को एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी की परिभाषा वही कर रहे हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। जो एनर्जी है ना कोई बनाता है नहीं बिगड़ती है, इसका केवल रूपांतर होता है, यही प्रक्रिया कर रहा हूं। जो आप हैं वही रूपांतरित होइए, आप गेहूं हैं गेहूं होंगे, लेकिन प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी। हाथ पर गेहूं रखने से गेहूं नहीं बनेगा, हाथ में गुठली रखने से फिर वो गुठली नहीं बनेगी, एक प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। गेहूं से गेहूं बनना है तो एक पवित्र गेहूं चाहिए, बलवान गेहूं चाहिए, फिर किसी विराट में, विराट मतलब पृथ्वी में जो स्वरूप है, एक एनर्जी मानी गई वैज्ञानिक दृष्टि से, किसी एनर्जी में उसको समर्पित करना पड़ेगा, पृथ्वी में आरोपित करना पड़ेगा। अब आपने आरोपण कर दिया वैज्ञानिक दृष्टि, आपका बगीचा बना, पड़ोसी का बगीचा नहीं बना, आपने अपने खेत में गेहूं लगाया, आपके खेत में गेहूं फिर गेहूं हुआ, पड़ोसी भी गेहूं लगा नहीं हुआ, तो तीन कारण हैं, ये विज्ञान जवाब देता है। आपका गेहूं अगर सड़ा है तो एनर्जी मदद नहीं कर सकती, पृथ्वी मदद नहीं कर सकती, और आपका गेहूं ठीक भी है, सड़ा नहीं है तो समर्पित नहीं हुआ। पहले इसको जरा आम भाषा में देखें, अच्छा गेहूं विधि के अनुसार जब धरती पर हम उसे समर्पित करेंगे अर्थात अंधेरे में ले जाएंगे, अच्छा गेहूं अंधेरे में ले जाओ, तो वो अच्छा गेहूं जब अंधेरे में गया तो बदलो मत, उसमें स्थिरता आनी चाहिए। अब समझिए, समर्पण, स्थिरता, शक्ति, आपने समर्पित किया और गेहूं ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप जस्ट गोन चेंजिंग एंड चेंजिंग, आज यहां किया फिर किया फिर वहां किया फिर वहां किया। अब यही बात जरा समझ लें तो बहुत कितनी बातें समझ में आ जाएगी। गेहूं हाथ में नहीं होगा, कहीं उसे समर्पित करना पड़ेगा। आपने जमीन में समर्पित किया लेकिन फिर गेहूं निकाला, कल वहां किया परसों वहां किया, तो जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा गेहूं का समर्पण भी हुआ, स्थिरता भी आई, फिर भी नहीं गेहूं हुआ तो सड़ा हुआ गेहूं होगा। मेरे पास लोग आकर कहते महाराज जी 20 साल से मंदिर में जाता हूं तो मुझे तो लगता है सड़ी हुई गुठली 20 साल का 25 साल तक बैठी रहे वो पेड़ बनने वाली नहीं। एक सड़ी हुई गुठली जब जमीन में आरोपित करने पर भी पेड़ नहीं बन सकती, तो सड़ा हुआ मन लेकर कुछ भी करोगे कुछ होने वाला नहीं। ये जो भूमिका आपको बता रहा हूं उसी सिलसिले में मेरे पास कई बार लोग आते हैं, बड़े प्यार से, बड़ी नम्रता से कहता, बड़े प्यार से, मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा नहीं। महाराज जी, मेरे गुरु महाराज जी 600 बरस के हैं। मैंने कहा, मैं प्रणाम करके कहता, 6000 बरस के हिमालय में तो 6000 बरस के, 600 बरस के आपके गुरु महाराज जी 600 बरस के मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु महाराज के पास आप रहे लेकिन मन इतना सड़ा था कि गुरु महाराज जी बहुत देना चाहे लेकिन आपकी तुमड़ी में से सब निकल गया, बचा कुछ नहीं, चुप हो जाते। ये नम्रता देने के लिए तैयार है, आप गए नर्मदा के किनारे, लाए बहुत पानी, मैं भी गया, मैं भी भरा, लेकिन ऊपर नहीं आया तो पता चला कि तुमड़ी फूटी हुई है, कमजोर है। अब यही बात, इसी बात को समझना। स्वामी जी शंकराचार्य जी बहुत छोटी उम्र के थे, संत ज्ञानेश्वर बड़ी छोटी उम्र के थे, स्वामी राम थे 33 साल के थे, विवेकानंद 40 साल के थे, मैं तो स्वामी जी 60 साल को हो गया फिर भी कुछ समझ नहीं आता, 60 क्या 600 बरस को हो जाओ, जब तक सड़े रहोगे कुछ नहीं होने वाला। उम्र से कोई मतलब नहीं। अभी थोड़ी दिन पहले किसी ने एक व्यवहार की बात की कि स्वामी जी मैं इतना अच्छा हूं फिर भी क्या, तो उनको समझाया, मैंने कहा प्रकृति को देख लो, जगत को सामने देख लो, सब पता चल जाएगा। उम्र की बात छोड़ो, जो उनको समझाया वही आपको बता रहा। बाबर का पेड़ 5 साल का है कि 100 साल का, आरती करो, दूध से सिंचन करो, प्रणाम करो, लेकिन वो कांटा ही देगा, उसका स्वभाव कांटे का ही। और आम का पेड़ वो 5 साल का है कि 10 साल या 100 साल, उसे काटो, गाली दो, निंदा करो, लेकिन वो फल ही देगा। तो जो आप कह रहे हैं ये प्रकृति में शुभ अशुभ चलता रहेगा, आप अपने को ठीक करो। आप आम हैं, आम की तरह रहो, बावर की तरह ना रहो। और आम अगर बावर होना चाहेगा तो बड़े प्यार से कहूं, खुद विज्ञान का था इमिटेशन डेथ। अगर आम का पेड़ बावर होना चाहेगा, बावर तो नहीं बनेगा, आम भी नहीं रहेगा, और आप ना नर रहेंगे ना पशु रहेंगे, टोटल पशु भी बन जाओ तो भी काम आओगे, कम से कम चमड़ा तो काम में आएगा, दूध तो काम में आएगा, हाथी का दांत तो काम में आएगा, यहां तो ना दांत काम में आ रहा है न चमड़ा काम में आ रहा, लेकिन एक अच्छे इंसान बन जाओ तो ऊपर से नीचे तक दुनिया सारी आरती करेगी। आप कुछ बताना चाहता हूं आपका, हूं अपने देश में बोल रहा हूं, कोई भी देश में नहीं, जबरदस्त बातें हैं, ये विज्ञान भी मानता है। या सोचो तो सही, कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते स्वामी जी आप भगवान सिद्ध करो। मैंने कहा तुम सिद्ध करो, तुम्हारे पिता कौन है? कहा माँ ने कहा, तो मैंने कहा श्रुति स्मृति मेरी माँ है, और माँ का खंडन करने वाला पुत्र नहीं होता, मैं श्रुति स्मृति का पुत्र हूं, इसलिए कहती है मानता हूं। मैंने कहा तुमने अपने बाप को देखा है? कहा नहीं। तो क्यों मानते हो? बाप बिना बाप के पैदा हुए? क्या विचार करो? इसलिए आपसे कहा, तो विज्ञान भी कहता है बिना बाप के मैं नहीं पैदा हुआ, इसलिए बाप को स्वीकार करो, सिद्ध करने की जरूरत नहीं, किसी शक्ति से जगत हुआ है इसलिए स्वीकार करो, सिद्ध करने की जरूरत नहीं, स्वीकार करो, सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए कोई आदमी 2 साल का है, साल भर का है, बाप अमेरिका गए, कुछ हो गया, नहीं वापस आए, जी मैंने तो बाप को देखा नहीं, तूने देखा कि नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा जन्म बिना पिता की मदद के नहीं है। तुम परमात्मा को देखे कि नहीं देखे, लेकिन जो कुछ प्रकट हो रहा है उसके पीछे जो शक्ति है, जिसको आपने अंतरिक्ष कहा, उसे हमने परमात्मा कहा। आप देखे कि नहीं देखे, देखे कि नहीं देखे, इसका सवाल नहीं उठता। आज विज्ञान कह रहा है, ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं। अब जा देख लीजिए, बड़ी एक प्राइमरी क्लास की बात बताएं। आप जब पढ़ते थे तीसरी चौथी जमात में, तो मूलधन सिद्ध करते थे, तो क्या माना मूलधन एक रुपया, क्यों मानते हो माना मूलधन एक रुपया? आज विज्ञान भी कहता है कोई चीज सिद्ध करने के लिए पहले स्वीकार करो, पहले मानो। आप मानने के लिए नहीं तैयार हैं तो मैं सिद्ध कैसे करूं? पहले मानो, देखा कि नहीं देखा कि है परमात्मा, उसके नाम अनेक हैं, वो बात अलग है, मैं बाद में लेता हूं। लेकिन एक बात जो आपको बताना चाहता, हर क्षेत्र से लोग जमीन से आसमान तक गए, गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर लोग वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, मंत्री बने, राष्ट्रपति बने, कलेक्टर बने, बड़े से बड़े घर में भी जन्म लेकर बने। हर तरह हमारे पास उदाहरण, हम संतों की बात करें, अगर बुद्ध महावीर की बात करूं तो हमारे पास और भी संत हैं जो बहुत गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन फिर भी अनुभव के द्वारा, कोई संस्कृत में बोला, कोई अपनी वाणी में बोला, बराबर है, अनुभव में अंतर नहीं, वाणी में अंतर हो। आप अमीर घर के हैं और हाथ पर आग रखते हैं, आप कई भाषाओं के विद्वान हैं। एक गरीब घर का व्यक्ति जो टूटी फूटी भाषा जानता है, गुजराती, हिंदी या कुछ भी, उसके हाथ पर आग रखी गई। मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। आप छह भाषाओं के विद्वान, बड़े अमीर घर में पैदा हुए, लेकिन हाथ पर आग रखोगे? एक गरीब घर में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा नहीं है, केवल टूटी फूटी भाषा समझता है, गरीब अपने हाथ पर आग रखता है, अमीर भी अपने हाथ पर आग रखता है, पढ़ा लिखा भी अपने हाथ पर आग रखता है, जो अनपढ़ है वो भी अपने हाथ पर आग रखता है। आग का अनुभव, भाषा अलग अलग होगी, लेकिन अनुभव में कोई अंतर नहीं होगा। ये समझने की बात है, विचार करने की बात, वही तो आपसे कह रहा हूं। कितनी जब है, आप पढ़े लिखे हैं तो स्वीकार करता, मैं आपका आदर करता, लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि जब जस शक्ति आप में है, लेकिन उसकी एक विधि है, उसी विधि के लिए एक भूमिका आपको बता रहा हूं, और इसके बाद क्रम से कहूंगा। अब जो यम नियम की बात है, मैंने तीन बातें वैज्ञानिक ढंग से कहा, प्रबलता, स्थिरता, समर्पण। क्रम से प्रबलता, स्थिरता, समर्पण, किसी भी तरह से हम कहते हैं समर्पण, स्थिरता, प्रबलता, किसी तरह बोलिए। गेहूं को समर्पित किया, स्थिरता आई, प्रबलता, या गेहूं पहले प्रबल है, स्थिरता आई और फिर समर्पित किया, ये भाषा में थोड़ा, लेकिन मूल बात वही है। मैं आपसे पूछता हूं, आप किस शक्ति में अपने को समर्पित किए? वो उसी का स्वरूप है प्रकट, अंतरिक्ष में से सब प्रकट हुए, परमात्मा सब प्रकट हुए, और वो प्रकट ने एक विधि करके आज हमारे सामने जो अवतारवाद आया, अब वे वैज्ञानिक मानने लगे, पहले नहीं मानते थे, अब मानने लगे। राम हमारी आपकी दृष्टि से भगवान, कृष्ण हमारी आपकी दृष्टि से भगवान, महावीर भगवान, भगवान बुद्ध भगवान, जा विचार कीजिए ऐसा क्यों? अब यही मैं आपको बताता हूं। मेरे प्रिय आत्मन, विज्ञान पूरा समर्थन दे रहा है और उसी समर्थन में बता रहा है, किसी का खंडन नहीं है। ये समझने की बात है, जानने की बात है, क्योंकि खुद विज्ञान कहता है खंडन करने वाला अपने को नहीं समझ पाया, अपनी साधना में पूर्णता नहीं प्राप्त की, अपनी साधना में अधूरा है, इसलिए वो दूसरे का खंडन करता है। चलो, एक आदमी विद्वान है और एक अनपढ़ है, दोनों सो गए, कौन किसका खंडन करेगा? विद्वान अनपढ़ का करेगा कि अनपढ़ विद्वान का? ऐसी स्थिति में किसका खंडन कर रहे हैं? खंडन कर ही नहीं सकते शब्द के ऊपर, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, वहां न कोई वाणी है न कोई विचार है, आप हैं हैं, या विचार करो। तो मेरे प्रिय आत्मन, आप सब राम मानो, कृष्ण मानो, शिव मानो, पैगंबर को मानो, महावीर को मानो, बुद्ध को मानो, ये मान्यता आपके माना। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, आप मान तो लिए, चलो एक पिता की बात कर दूं, बड़े बड़े मेरी माँ ने फोटो दिखाया और कहा है तुम्हारे पिता हैं। चार साल के बाद पिताजी आए, ये तो एक मनोवैज्ञानिक बात दे रहा हूं, चार साल के बाद पिताजी आए, फोटो में पिताजी 30 साल के लग रहे हैं, बीमार हुए, शरीर सूख गया, चेहरा पीला पड़ गया और मैं फोटो से मिलान करने लगा। मैंने कहा फोटो वाले पिताजी तो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। माँ ने कहा नहीं, यही तुम्हारे पिता हैं। जब मेरी माँ ने कहा यही तुम्हारे पिता हैं, तो फोटो से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। ये जड़ी गारी बात को जा समझाना चाहता हूं। और आप अगर बदल गए तो न माँ को समझा न पिता को समझा। एक कहता है कि बस ये मेरा ही भगवान ठीक है, तुम्हारा नहीं ठीक है, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? यही सी उदाहरण को दूसरे ढंग से कर, मान लीजिए कि मेरे पिता सांवले हैं और मेरा मित्र जो पड़ोस में रहता है उसके पिता गोरे हैं और दोनों के पिता 4 साल के बाद आए। मेरी माँ ने कहा ये तुम्हारे पिता, उसकी माँ ने कहा उसके पिता, और मेरे मन में तर्क उठा जैसे हम दोनों मित्र हैं ऐसे मेरे पिता पड़ोसी मित्र के पिता, ये दोनों मित्र हैं, दोनों विदेश से 4 साल के बाद आए, और मैं तर्क करूं कि मेरे पिता सांवले इसके पिता गोरे क्यों? ये तर्क नहीं, ये स्वीकार करने की बात है। वहां कलर से कास्ट से क्रीड से नहीं स्वीकार किया, यू आर द फादर इज अबव द कास्ट क्रीड एंड कलर। तो जिस परमात्मा की मैं बात कर रहा हूं, जिस रूप में आपने स्वीकार किया, आप बदल कैसे गए? ठीक है राम, अब वो कहानी आती है। तुलसीदास ने कहा प्रभु जिस रूप को मैंने स्वीकार किया है वो धनुधारी रूप है, और देखिए उनकी श्रद्धा उनका विश्वास कृष्ण में भी वही धनुधारी का रूप प्रकट कर दिया। लेकिन हम तो मानते ही नहीं, हम तो बस कुछ और मानते। ये कहानी केवल काल्पनिक नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी श्रद्धा इतना विश्वास इतना समर्पण तो चाहिए, लेकिन नहीं है। या विचार कीजिए कहां खंडन है। लेकिन हम लोग अनुयायी लोग फॉलोअर्स नहीं, बस मेरा भगवान ऐसा होगा, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा, अरे तुमने अपने भगवान को नहीं देखा, दूसरे भगवान खंडन कैसे करते? एक बात तर्क वितर्क चला, मनीषानंद की बात बताए बड़े प्यार से, तर्क वितर्क चला परमात्मा के विषय, हर तरह के लोग बैठे थे। मैंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा आपने अपने परमात्मा को देखा जिस साकार की पूजा करते हो, आपने अपने परमात्मा को देखा जिस साकार में पूजा करते हो, बताइए। वो चुप हो गए। मैंने कहा अगर देखा होता तो दूसरे का खंडन आप नहीं करते। खंडन करते ही नहीं, ये खंडन ही बता रहा कि आप अपने परमात्मा को पूरी तरह नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, क्यों खंडन करते, या विचार कर। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, चाहे राम की बात हो, चाहे कृष्ण की, चाहे शिव की, चाहे गुरु की, माता की, पिता, कहीं भी, पहले अपने आप को समर्पित कर दो, फिर जीवन में स्थिरता आनी चाहिए। कितने लोग मेरे पास आए, स्वामी जी उनका गुरु उनको 3 साल में करोड़पति बना दिया, तो मेरा विचार उनको जाके गुरु बना लूं। मैंने कहा कर्म से बने, उनके भी 10 चेले हैं, 10 में से कितने ज्ञान हुआ। रामकृष्ण परमहंस की बात बताता हूं, रामकृष्ण परमहंस के पास भी बात आई, कहते विवेकानंद पूर्वजन्म से तैयार है, इसलिए उसे परमात्मा तक पहुंचाने में तकलीफ नहीं है, तुम्हारी तो तैयारी नहीं है, रामकृष्ण क्या करें। हमारा आपका सबका संबंध ट्यूब या बल्ब से, पावर हाउस से आएगी, विधि है, लेकिन आपका बल्ब ही फ्यूज हो गया, आपका बल्ब ही 0 का है, और आप पावर हाउस को गाली दो, ऐ पावर हाउस तू तो अन्याय करता है, पड़ोसी के यहाँ बहुत प्रकाश, मेरे यहाँ, पावर हाउस को गाली मत दो। परमात्मा जिसे भी मानते हो वो पावर हाउस का भी पावर हाउस है, लेकिन आपका मन ही अगर टूटा हुआ है, वो चाहे माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, राम या कृष्ण के रूप में, जो हनुमान की भक्ति आप करोगे, अरे आपके पूछ पूछना भी इज्जत, आपकी इज्जत में आग लगाई जाए तो आप कहोगे मुझे तो राम चाहिए ही नहीं है, कैसा राम है जो मेरी इज्जत चली जाए। आपकी पत्नी का हरण हो जाए तो आप भी छोड़ दो, जर पी लोगे। आज मनोवैज्ञानिकों की बात बता रहा, आप जीवन कुलचा उठाना चाहते हो, लेकिन एक बात सीता, ये जो वैज्ञानिकों की बात है बता रहा, राम ने सीता को स्वीकार किया, हर परिस्थिति में स्वीकार किया, और हम आप तो बदल जाते, अभी तो 6-6 महीने तलाक हो रहा, क्या स्वीकार कर रहे। आप एक बात करता, मनोवैज्ञानिक कहते ये व्हेन यू एक्सेप्ट एंड व्हेन यू एक्सेप्ट टोटली लेट एनीथिंग हैपन, यू डोंट चेंज योरसेल्फ, एक्सेप्ट करती यही होता है, जिसे हमने स्वीकार किया कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उसे नहीं छोड़े, छोड़ दिया, देन वी बिकम द कमर्शियल, तो आप व्यापारी बन गए, तो भगवान भी सोचेंगे ठीक। अब ये कहानियों का मतलब क्या है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, आप तो कह सकते हो कि अर्जुन को हिजड़े कपड़ा पहनना पड़ा, कृष्ण को मानने की क्या जरूरत, लेकिन कभी अर्जुन से पूछा कि हिजड़े के कपड़े में भी वह कृष्ण को नहीं छोड़ा, यहां तो हिजड़े कपड़े क्या बात है, ये थोड़ा कपड़ा बदल जाए, मकान बदल जाए, कहते क्या भगवान ने किया, मेरा मकान बिकवा दिया, मेरा जमीन, वो कर्म की बात है। अगर मां की बात मान जाते युधिष्ठिर, मां ने कहा बेटा जुआ मत खेलो, मां भी भगवान का रूप है, मां संकेत दे रही है, और आज मनोवैज्ञानिक कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज की संज्ञा से जिसे जाना जाता है, उनकी भी मां थी, और मां की बात मानते तो 13 साल की तकलीफ नहीं होती। नहीं माना, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिक ढंग से आज हमें जो दुख सुख से गुजरना पड़ रहा उसके पीछे मेरा कर्म है, लेकिन आपको याद दिला दें मनोवैज्ञानिक एक बात कर रहे हैं, कर्म अपना चमत्कार दिखाएगा, लेकिन शक्ति का आधार वही राम या कृष्ण, शिव या गुरु, माता पिता, जिसे भी आप मानते हैं, टोटल जहां श्रद्धा है, यहां अगर पेड़ में भी श्रद्धा है तो भी आपकी मदद करेगा, यहां श्रद्धा की बात है, ये नहीं कि आप किसे मानते हैं किसे नहीं, पूरी टोटल बात कर रहा। तो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, संभव है कर्म आपको हिजड़े कपड़ा पहना दे, संभव है कर्म सीता बात नहीं मानती है, लक्ष्मण की भी बात नहीं, मर्यादा को उल्लंघन किया, संभव है कि रावण हमें उठा ले जाए, मर्यादा रावण नाम दुख, लेकिन मनोवैज्ञानिक एक बात इसके आधार पर कह रहे हैं, संभव है कि हमसे भूल हो जाए, हम आदमी हैं भूल होती है, संभव है हमसे भूल हो जाए, लेकिन अपने परमात्मा जो भी रूप है, राम है, कृष्ण है, शिव है, गुरु जो भी, पूरा टोटल मानना, संभव है कि हमसे आपसे भूल हो जाए, लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में अपने भगवान में श्रद्धा विश्वास रखोगे, परिस्थिति कितनी बिगड़ेगी लेकिन आपका सत्यानाश नहीं होगा, आप बच जाओगे। भले कोई परिस्थिति हमें हिजड़े कपड़ा पहना दे, कोई परिस्थिति लंका पहुंचा दे, रावण के पास पहुंचा दे, हो गया कोई होगा, भूल हो जाती है। जब स्वीकार किया पांडव ने, मनोवैज्ञानिक बात, पांडव ने स्वीकार किया कृष्ण को, एक से एक परिस्थिति आई लेकिन छोड़े। राम ने सीता को स्वीकार किया, कैसी भी परिस्थिति आई लेकिन छोड़े। ये साधना में ले लो, आज पूरा मैं अवतारवाद मानता हूं, मैं सनातनी हूं लेकिन वैज्ञानिकों से मेरा संबंध है। वैज्ञानिक लोग अभी खुलेआम अवतारवाद नहीं मानते, लेकिन एक चीज मान रहे हैं कि जीवन में अगर कुछ लाना है तो रामायण महाभारत से सीखो, वेद का अध्ययन करो, ऋचाओं का अध्ययन करो, इनकी हर चीज के पीछे कोई राज है। तो वैज्ञानिक लोग भी अब मान रहे हैं कि नहीं, अवतार बात तो अभी नहीं खुल के मान रहे। हालांकि वैज्ञानिकों से जब चर्चा होती है तो मैंने कहा कि जब आप मानते हैं कि जो चीज है वही प्रकट अप्रकट होती है, तो विशेष रूप से जो आई उसे हमने अवतार माना, तो मेरी बात सुन के कहते हैं कि मनीषा नंद तुम्हारे गांधी जी भी 1000 साल के बाद भगवान हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छी बात, अर्थात वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हर व्यक्ति संघर्ष के माध्यम से, सहन शक्ति के माध्यम से कर्म करते हुए जब सफलता प्राप्त करेगा तो भगवान हो जाएगा, फिर उस पर मैं तर्क नहीं करता। और मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक एक चीज मान गए राम हुए कि नहीं, ये वैज्ञानिक मैं मानता हूं, लेकिन यहां जो वैज्ञानिकों की बात है वो मैं आपको, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, राम हैं कि नहीं, कृष्ण हैं कि नहीं, छोड़ो, लेकिन राम की कथा से अगर सीखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। कृष्ण की कथा से तुम सीखोगे तो जो जहां फिसलन है, रामायण में जहां फिसलन है, महाभारत में जहां फिसलन है, वो व्यक्ति की बात है, मैं उस पर तर्क नहीं करता। व्यक्ति कहां कहां फिसलता है वही रामायण में देखने को मिलता है, व्यक्ति कहां कहां फिसलता है वही महाभारत में दिखाया गया। इस तरह से वैज्ञानिक मान रहे हैं। एक वैज्ञानिक मुझे मिला, सुन के ताजुब कर, वो कहते हैं मनीषानंद जी तो डांडिल करके हुआ है, इतना प्रसिद्ध नहीं है लेकिन मुझे मिला, कहे मनीषानंद जी मैं भगवान को नहीं मानता फिर भी मानता। मैंने कहा आप वैज्ञानिक हाँ और ना दोनों बोल रहे, कहा जा मेरी बात तो सुन, मैं भगवान को नहीं मानता लेकिन फिर भी मानता हूं। मैंने कहा क्यों, कहा भगवान के मानने से इतना तो हो गया, बड़ी सुंदर बात कहा कि भगवान के मानने से इतना तो हो जाता है कि हमारा चिंतन तो नहीं खराब होता, रास्ता तो नहीं खराब होता, उनके पढ़ने से देखने से आपके रामायण महाभारत कृष्ण और राम का जीवन पढ़ने से मन में हताशा निराशा तो नहीं आती। फिर से कह दो मैं भगवान नहीं मानता लेकिन आपके राम और कृष्ण को मानने से मैं हताशा निराशा में निकल जाता हूं, इसलिए मानता हूं। क्योंकि राम के सामने कितनी हताशा आई लेकिन घबराए नहीं, पांडवों के सामने कितना उसका कहने का ढंग है कि मानने से मैं निर्बलता में से निकला, मैं कमजोरी में से निकला, अपना अपना कहने का ढंग है। अब यही मेरे प्रिय आत्मन, आज वैज्ञानिक भी जब स्वीकार कर रहे हैं हमारी चीज को, तो हम आप यहां जन्म लेकर उसे क्यों नहीं स्वीकार कर। इसलिए कहीं कोई खंडन नहीं है, जिसे स्वीकार करो टोटल। और फिर देखो, मैं आगे बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हमारे यहां हम कहते पूरी वसुधा कुटुंब है, उस कुटुंब में रावण भी आया, कंस भी आया, शिशुपाल भी आया, लेकिन कुटुंब को ठीक करने के लिए एक बार मुझसे प्रश्न पूछा वैज्ञानिकों ने, कहा मनीषानंद जी आप लोग सब में परमात्मा देखते हो? मैंने कहा सब में परमात्मा देखते हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? तो आपके राम ने रावण को क्यों मारा? तो मैंने वैज्ञानिक हाथ पकड़ा, मैंने कहा आप ये बताइए, ये उंगली सड़ेगी तो आप इसे काटोगे कि रखोगे पालोगे? ये है आपकी, ये रावण मेरा है लेकिन सड़ गया, इसलिए सड़ी हुई चीज को काटना ये भारतीय संस्कृति है।